करार बिंदे नपदार बिंदा बुखार बिंदे बिन में सयंतम बटस खत सकुते सयानम पालो कुलदम मनसा सिरामी श्री कृष गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहे पिबश्वा व्रत मेत देव गोविंद दामो धर्माधुरेती गोविंद दामो धर्माधुरेती विक्रेत कामा खिल गोप कन्या मोयार पारा पित चेत धरती दत्याद कम्बो बसाद गोचर गोविंद दामो धर्माद बेटी ग्रहे ग्रहे को पिबदो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप योगं पुण्यानि नामानि पठयन्ति नित्यं गोविन्द दामो धर्माधिवेति गोविन्द दामो धर्माधिवेति सुनो सयाना निलये निजेपी नामामि विष्णु प्रवदन्त नृत्या तेनेश्च तं तन् नेतां व्रजन्ति गोविन्द दामो धर्माधिवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणी नामामि कृष्ण शिवनोहराणी समासिकातार त्रिविनाशनानि गोविन्द दामो धर्माधिवेति गोविन्द दामो धर्माधिवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव दाप्यम् गोविन्द दामो धर्माधिवेति श्रीकृष्ण राधा पर गोकुलेश गोपाल गोवर धन नाथ विष्णु दिव्य पिबश्वा व्रत मेत देव गोविंद दामो धर्माधिवेति गोविंद दामो धर्माधिवेति जिह्वे रस के मधुरा पिया तुम सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेत मधुराचराणि गोविन्द दामो धर्माधिवेति त्वामेव याचे मम देह जिह्वे समागते दल दिधरे कृतान्ते भक्ताभ्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामो धर्मा पदारविंदम पुकारविंदे विनिवेशयन्तम् भटस्य पात्र सकृते शयानौ पालौ मुकुन्दम् मनसा स्मरामि।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शानन्दमानन्द वनेवसन्तम् आनन्दगन्दम् मतपापवृन्दम् वैराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीमेश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये वृन्दावन विहारी नटवरनागर नन्दा भजो मन
गोविन्दा ಭಜೋರಿ ಮಣಿ ಗೋವಿಂದ
ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಭಜೋರಿ ಮಣಿ ಗೋವಿಂದ
ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಭಜೋರಿ ಮಣಿ ಗೋವಿಂದ
भांति शरक प्रथम संकलम मंत्र का उच्चारण करें। ओम तत्सद द्वैतस्य
द्वैतस्य
ब्रह्मणो अन्हि
ब्रह्मणो अन्हि
द्वितीये परार्धे
द्वितीये परार्धे
श्री श्वेत वाराह कल्पे
श्री श्वेत वाराह कल्पे
वैवस्वत्मनमंतरे
वैवस्वत्मनमंतरे
अष्टाविंशतितमे कलियुगे
कलियुगे
कली प्रथम चरणे
कली प्रथम चरणे
सभी लोग बोलो
जम्बूदीपे
भारतवर्षे
भरतखंडे आर्यावर्तैक
देशांतरगते कीलकनाम संवत्सरे अमुक नाम नोहम अमुक गोत्र उत्पन्नोहम अद्य मासानां
उत्तमे मासे
मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे
दशम्यां तिथौ
शनिवासरे महाराष्ट्र प्रांते मुंबई नगर्यां श्री प्रेमपुरी आश्रमे
श्रीमद्भागवत सप्ताह
श्रवणार्थम
पंचम दिवसे
प्रथम उपस्थितौ
विनियोगः
अनेन
श्रीमद्भागवत सप्ताह
श्रवणेन
माम
धर्मः
अर्थः
कामः
मोक्षः
फलानां
प्राप्तिः
अस्तु
एवं च
अभीष्ट
फल
सिद्धिः
भगवत्कृपा
अस्तु
श्रीकृष्ण
परमात्मा देवता
प्रियंता
भगवान का ध्यान करते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जगन्नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक नंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर के पावन पुनीत पादारविंद में एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के पावन अवसर पर आवाहित समस्त देव विग्रहों के पावन चरणों में एवं ब्रह्मलीन पूज्यपाद जिनकी पावन स्मृति में श्रीमद् भागवत सप्ताह हो रहा है ऐसे अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन शिव स्वरूप पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में सत्सत वंदन हमारे परम स्नेह के पात्र प्रेमपुरी आश्रम के समस्त ट्रस्टीगण तथा श्रीमद् भागवत सप्ताह के मुख्य यजमान के रूप में बहन माधुरी बहन ढोलकिया तथा उनका समस्त परिवार एवं अन्य 25 जो पोथी रखी हैं उनके समस्त यजमान वृंद श्रद्धामयी मंगलमयी मातृशक्ति श्रीरूपा माताओं एवं कृष्ण रस के रसिक समस्त भक्त वृंद आइए चित्त की वृत्ति को एकाग्र करते हुए भगवान में सन्निहित करें। आप लोगों ने कल बहुत ही पावन उत्तम श्रेष्ठ जीवन को महानता की ओर ले जाने वाला पावन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का दर्शन किया। बालकृष्ण भगवान का दिव्य अवलोकन किया। भगवान बालकृष्ण की झांकी बड़ी दिव्य थी, अलौकिक थी, जिस झांकी के माध्यम से सभी का हृदय भाव विभोर हो गया। आइए उन्हीं बालकृष्ण भगवान की कुछ लीलाओं पर श्रीमद् भागवत के माध्यम से चर्चा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज पुण्य सलिला माते श्री जाह्नवी के तट पर विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में परीक्षित महाराज ने नतमस्तक होकर बड़े भाव और श्रद्धा के साथ प्रश्न किया कि भगवान बतलाने की कृपा करें, ये जो भगवान के अवतार होते हैं इन अवतारों के संदर्भ में मुझे कुछ बतलाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज ने बहुत अच्छा विवेचन किया। विवेचन करते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा अच्छा विवेचन किया। अवतीर यदो वंशे अवतीर यदो वंशे भगवान भूत भावना कृतवान आंति विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। भगवान मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि भगवान के जो पावन अवतार हैं इस जीव को उन पावन अवतारों के श्रवण से, उनकी कथाओं का अवलोकन करने से, उनका चिंतन करने से, उनका गुण और लीला धाम का चिंतन करने से, उनकी शांगोपांग लीलाओं का दर्शन करने से, उनका पूजन करने से, धाम का चिंतन करने से, स्वरूप का चिंतन करने से, जिस प्रकार से अग्नि के सामीप्य से, सानिध्य से व्यक्ति का शीत दूर हो जाता है, चंद्र के सामीप्य से ताप का दूर हो जाता है, ऐसे ही भगवत चरित्र के सुनने से इस जीव का पाप नष्ट हो जाता है। बताया है, यथा अग्निना हेम मलम जहाति, जिस प्रकार से अग्नि में सुनार सोने को डाल देता है और जब वो सोना अग्नि में पड़ जाता है तो जैसे वो अग्नि सोने के मल को भस्म कर देती है, ठीक ऐसे ही जब यह इस भक्त का चित्त भगवान में समर्पित हो जाता है तो चित्त पर आए जो कलमस हैं, जो विकार हैं, जो अघ और पाप हैं, वह पाप भी ठीक ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि में पड़ने से सोने पे लगा हुआ मैल जल जाता है। शिव राजन, भगवान के गुणों का, भगवान के धामों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, गुणानुवाद करो, भगवान की लीलाओं का, उन झांकियों का अवलोकन करते करते भगवान की लीलाओं का श्रवण करो। श्रवण करते करते आपको अनुभूति होने लग जाए कि हम लीला का अवलोकन श्रवण नहीं बल्कि अवलोकन कर रहे हैं। लीला जब सुनो तो आपको ऐसा लगे कि भगवान हमारे सामने लीला कर रहे हैं और हम भगवान की लीला को देख रहे हैं। परीक्षित महाराज को अनुभूति होती है, गुरुदेव जब अपनी पावन वाणी से भगवान की लीलाओं का आख्यान व्याख्यान करते हैं तो भगवान मैं अपनी खुली आंखों से उनका दर्शन करता हूं। आपको अपनी खुली आंखों से भगवान की लीलाओं का दर्शन होना चाहिए, श्रवण के साथ साथ आपको दर्शन होना चाहिए। सुखदेव जी ने ऐसा बतलाया, परीक्षित महाराज बोले, गुरुदेव जब आपकी वाणी पावन वाणी निश्चित होती है और हमारे कर्णपुटों के माध्यम से हृदय में जाती है, हृदय में जाते ही मैं अपने इन चक्षुओं के माध्यम से उन लीलाओं का, उन भव्य भगवान के स्वरूपों का आंख खोल के दर्शन करता हूं, ऐसी मुझे अनुभूति होती है। जब भक्ति बढ़ती है, जब साधना उपासना बढ़ती है तो हमको वो चित्र नहीं लगता है, हमको वो मूर्ति नहीं लगती है, हमको साक्षात भगवान का विग्रह, चलता फिरता विग्रह, बोलता देखता विग्रह लगता है। मीरा ने कभी एहसास नहीं किया, शूर ने कभी एहसास नहीं किया कि मेरे भगवान नहीं बोलते हैं, मेरे भगवान नहीं खाते हैं, मेरे भगवान मुझे नहीं निहारते हैं। यदि आपका भाव है तो भगवान आपको निहारेगा, भगवान आपको देखेगा। भाव बनाओ, भावो ही विदिते देवो तस्मात भावो ही कारणम। शिवराजन इन भगवान के साकार स्वरूपों में, इन भगवान की लीलाओं में अपनी वृत्ति को टिकाओ। जब आंख संसार में जाती है तो आंख में काम आता है, और जब आंख भगवान में जाती है, ध्यान देना, तो आंख में राम आता है, कृष्ण आता है, बलराम आता है। आंख में राम को लाओ। भोले बाबा कहते हैं कि मैं निरंतर राम का चिंतन करता हूं, जो राम का चिंतन के करने से काम कहां आ सकता है, अरे काम तो जल जाता है। शिव ने काम को भस्म कर दिया, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, अरे जहां राम है वहां काम कैसे हो सकता है, जहां कृष्ण है वहां कैसे काम हो सकता है। रासलीला के माध्यम से भगवान कृष्ण ने बतलाया है, आगे प्रसंग आएगा उसे विस्तार करूंगा। रासलीला के माध्यम से भगवान ने बतलाया है, अरे मैंने काम को परास्त किया है, हमने रास की लीला से काम को परास्त किया है। काम को परास्त करो लीला के माध्यम से, लीला के दर्शन से, लीला के अवलोकन से, भगवान के इन विग्रहों के दर्शन से। परीक्षित महाराज जब कथा को सुनते हैं तो लीला को देखते हैं, सुनते हुए तुमको दर्शन का की अनुभूति होनी चाहिए। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। गुरुदेव मैंने आपकी वाणी से, आपकी पावन वाणी से मैंने अभी कृष्ण अवतार का अवलोकन किया, कृष्ण अवतार का दर्शन किया। नंद नंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर देवकी के उदर से निश्चित होकर के, प्रकट होकर के, प्रादुर्भूत होकर के गोकुल में बाबा नंद के घर पहुंच गए हैं। जशोदा मैया बड़ा आनंद ले रही हैं, भगवान ये अवतार बड़ा विलक्षण है। ध्यान देना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अवतान, अवतार, अवतार का मतलब होता है अब तान अघान नीचान तारेती इति अवतार। वह अवतार हैं जो नीचे को भी तारे, नीच को भी तार दे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे यहां अवतार चार प्रकार के बतलाए, सुनना ध्यान से, चार प्रकार के। आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, स्फूर्ति अवतार, आविर्भाव अवतार। अवतार चार प्रकार के हैं। यद्यपि दश अवतार भी कहे गए हैं, 24 अवतार भी कहे गए हैं, पर ये अवतार हुए हैं, लेकिन ये चार प्रकार के अवतार बताए गए हैं। पहला अवतार आवेश अवतार। आवेश अवतार का तात्पर्य होता है जो आवेश में प्रादुर्भूत होता है। आवेश, आवेश अवतार में परशुराम जी आते हैं, परशुराम आवेश में आकर के, ध्यान देना। प्रवेश अवतार में जैसे द्रौपदी की साड़ी खींच रही है तो भगवान साड़ी में प्रवेश कर गए, ध्यान देना, भगवान साड़ी के अंदर प्रवेश कर गए, इसको बोलते प्रवेश अवतार। किया गया शुभकृत, किया गया सदकर्म, सोचो विचारो श्रवण करो, ये भगवान साड़ी में प्रवेश क्यों किए, भगवान साड़ी के रूप में प्रकट क्यों हो गए, ये भगवान ने प्रवेशावतार क्यों लिया, साड़ी के रूप में भगवान प्रकट हो गए, प्रवेशावतार क्यों। एक संत बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे, हमने उनकी पावन वाणी से सुना। संत बोले कि एक बार कोई तपस्वी महात्मा गंगा में स्नान कर रहे थे, दिसंबर का महीना था, देवी द्रौपदी भी गंगा स्नान करने गई, किसी पुराण की कथा है, देवी द्रौपदी भी स्नान करने गई, संत ने गोते लगाई, ज्यादा गंगा मैया में स्नान करने का आनंद आया, संयोग की बात, स्नान करते करते गंगा में खड़े हुए उस महात्मा को बहुत देर हो गई। द्रौपदी ने देखा कि महाराज ये जाप तो नहीं कर रहे हैं, इनको बहुत समय हो गया है। द्रौपदी की दृष्टि पड़ी तो महात्मा कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। द्रौपदी ने देखा कि मुझे लगता है लड़खड़ा रहे हैं, अभी गिरने वाले हैं, पर बाहर क्यों निकलते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। द्रौपदी ने उस संत को वंदन करके कहा, महाराज आप बाहर किस लिए निकलते हैं, आप लड़खड़ा रहे हैं, गिरने वाले हैं। संत ने कहा, बेटी मैं क्या बतलाऊं, संकोच हो रहा है बतलाते समय, देवी में स्नान करने जल में घुसा था, कटिवस्त्र लपेट रखा था, जल का प्रवाह आया और कटिवस्त्र बह गया है, हम पर वस्त्र नहीं है, देवी से मेरे पर वस्त्र नहीं, मैं कैसे निकलूं बाहर, मैं कैसे निकलूं बाहर। द्रौपदी ने तत्काल उसी क्षण अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ा और जल में ऐसे बहाया, संत ने पकड़ा और लपेटा, संत बाहर आए, संत ने द्रौपदी के सिर पे हाथ रखा, बेटी मैं तुझे वचन देता हूं, जैसे तूने मेरी लाज बचाई है, तेरी भी लाज एक दिन परमाता जरूर जरूर बताएंगे। संत ने आशीर्वाद दिया, तूने मेरी लाज बचाई, परमात्मा तेरी लाज बचाएंगे, तूने संत को वस्त्र दिया है, तूने संत को वस्त्र दिया है, परमात्मा तुझे वस्त्र देगा, ध्यान देना। दी हुई वस्तु अनंत रूपाय कल्पित, अनंत गुना होकर के मिलती है, अनंत रूपाय कल्पित, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता में लिखा, अनंत रूपाय कल्पित, अनंत गुना होकर के मिलती है, एक गुना नहीं। अरे भिखारी भी मांगता है तो कहता है तू एक पैसा देगा तो तुझे हजार पैसे मिलेंगे, भिखारी बोलता एक पैसा देगा तो तुझे हजार पैसा मिलेगा, ध्यान देना, ध्यान देना। दिया हुआ अन्न, दिया हुआ वस्त्र, दिया हुआ द्रव्य कभी भी घटता नहीं, बढ़ता है। ये दान का स्वरूप है। आशीर्वाद दिया, एक ऐसी अवस्था आई, कथा आपको मालूम है, जब साड़ी खिंच रही थी, द्रौपदी ने बहुत ताकत लगाई संभालने की। द्रौपदी ने सोचा, हम कब तक संभालेंगी, हे द्वारिकाधीश अब तुम ही आओ। तो भैया वही द्वारिकाधीश उस साड़ी के अंदर प्रवेश कर गए, साड़ी के अंदर प्रवेश कर गए, दुशासन खींचते 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 थक गया। 10,000 हाथी का बल दुशासन के अंदर था, थक गया। भगवान ने साड़ी में प्रवेश किया। दुशासन ने कहा कि समझ में नहीं आता है कि ये नारी साड़ी की बनी है कि साड़ी ही नारी हो गई है। अरे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कुछ समझ में नहीं आता है। प्रवेशावतार, आवेशावतार, प्रवेतावतार, स्फूर्ति अवतार, तीसरा स्फूर्ति अवतार। स्फूर्ति जो अस्ति और नास्ति, ध्यान देना, जो अस्ति और नास्ति के बीच में प्रकट होता है उसको स्फूर्ति बोलते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है नास्ति, नास्ति हिरण्यक, प्रहलाद बोलते अस्ति, अस्ति और नास्ति, प्रहलाद बोलते अस्ति, हिरण्यकश्यप बोलता है नास्ति, और अस्ति और नास्ति का जहां द्वंद होता है वहां स्फूर्ति अवतार होता है, स्फूर्ति अवतार होता है। नरसिंह भगवान का अवतार स्फूर्ति अवतार है। आविर्भाव अवतार, आविर्भाव अवतार में दो, राम और कृष्ण का अवतार, आविर्भाव अवतार परिपूर्ण होता है, पूर्ण अवतार होता है, इसे पूर्णावतार कहा गया है। ध्यान देना, पूर्णा अवतार के रूप में भगवान राम और कृष्ण हैं। राम लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सुनना ध्यान से, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, दोनों पुरुषोत्तम है, दोनों ही पुरुषोत्तम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने आजीवन, देखो भगवान कृष्ण और राम के जीवन को थोड़ा देखो, एक तरफ राम जी को पधारो, एक तरफ कृष्ण जी को पधारो, दोनों को देखो, एक बार राम को देखो फिर कृष्ण को देखो। राम को झांकोगे तो राम के जीवन में मर्यादा ही मर्यादा है। राम पहले शास्त्र को खोलते हैं, शास्त्र क्या कहता है, ये करूं कि ना करूं, जो शास्त्र कहता वही करूंगा, वही करूंगा, कितना ही कष्ट पड़े, कितनी मुश्किल मुसीबतें आए, मर्यादा से बिलग नहीं होऊंगा, समाज कहता है, जो शास्त्र कहता है, जो समाज कहता है, जो मर्यादा कहती, मैं वही करूंगा। प्यारी पत्नी को भी छोड़ने पड़ा तो राम जी ने छोड़ दिया, चटाई पे सोने पड़ा, कंकड़ पत्थरों में चलने पड़ा, जंगलों में रहने पड़ा, सूखे पत्ते खाने पड़े, अरे वृक्षों की छाल का भक्षण करने पड़ा। राम ने सब कुछ किया पर मर्यादा नहीं छोड़ी। मर्यादा, ध्यान दो, जब मेरे राम ने मर्यादा नहीं छोड़ी तो हमने क्यों छोड़ी? मर्यादाओं का पालन करो, नियमों का पालन करो। जिसकी जीवन में मर्यादा होती है वो उन्नति को प्राप्त करता है। भैया राम का जीवन कैसा है? मर्यादाओं से परिपूर्ण है, इसलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान कृष्ण को हम लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। जब राम की लीला को देखोगे तो कृष्ण की लीला उससे विपरीत, विरोधाभास। राम और कृष्ण की लीलाओं में विरोधाभास आपको मिलेगा। जो राम ने किया वो कृष्ण ने कभी नहीं किया। राम ने बोला, हाँ अब भगवान राम कृष्ण बनने वाले हैं ना, कृष्ण भगवान ने आकर के अवतार लेने के पहले ही कह दिया, अरे मैं राम बना तो हमारी प्यारी सी पत्नी सीता निर्दोष थी, कोई दोष नहीं था, और इन दुनिया वालों ने, इन संसार के लोगों ने बेचारी को हमसे बिलग कर दिया, मुझे बाध्य होकर के जंगल भी भेजना पड़ा सगर्भा अपनी देवी को। कृष्ण बोले कि अब मैं उस मर्यादा की माला को खूंटी पे टांगता हूं, ध्यान देना, खूंटी पे टांग दिया। भगवान कृष्ण बोले हम उस समय तो मर्यादा में बंध करके आए थे, हम पहले शास्त्रों के पीछे चले। भगवान कृष्ण बोले, ध्यान देना, कृष्ण का, कृष्ण की लीला और राम की लीला में दोनों विरोधाभास है। सुनना ध्यान से, हाँ, बड़ी सुंदर चर्चा, दोनों विरोधाभास है। भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन मुरली मनोहर बोले, देखो राम ने जो किया, राम ने जो किया किया वो मर्यादा में बंद करके किया। राम शास्त्रों के पीछे हैं, ध्यान देना, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, राम शास्त्रों के पीछे हैं और कृष्ण के पीछे शास्त्र है। एक के आगे शास्त्र है और एक के पीछे शास्त्र है, ध्यान देना। कृष्ण आगे आगे चलते हैं, शास्त्र पीछे पीछे चलता है, ध्यान देना। शास्त्र आगे आगे चलता, राम पीछे पीछे चलते हैं, ध्यान देना। मेरी दोबारा फिर सुनो, कृष्ण आगे आगे चलते हैं, उनके पीछे शास्त्र उनका अनुकरण करता है, और राम शास्त्र को आगे करते हैं, राम शास्त्र का अनुकरण करते हैं। कृष्ण अवतार में, रामा अवतार में यही अंतर है कि राम के आगे शास्त्र है और कृष्ण के पीछे शास्त्र है। अर्थात, सरल कर दूं, अर्थात कृष्ण ने जो किया वो शास्त्र बन गया, राम ने वही किया जो शास्त्र ने कहा, शास्त्र ने कहा, ध्यान देना। कृष्ण कन्हैया लाल की, सुनो ध्यान से, चुबू से देखो राम की छोटी सी झांकी, देखो राम कृष्ण के दोनों की छोटी सी झांकी, छोटी सी बिल्कुल कुछ शब्दों की। राम जी महाराज का प्राकट्य रात्रि के दिन के 12 बजे होता है, राम का अवतार दिन के 12 बजे होता है। कृष्ण बोले यदि आप दिन के 12 बजे आए तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो रात के 12 पे आऊंगा, मैं रात के 12 बजे आऊंगा। भगवान कृष्ण बोले कि तुम नवमी को आए तो मैं नवमी को बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं अष्टमी को आऊंगा, ध्यान देना। शुरू से देखो, यदि आप दोपहर की तपती धूप में आए हो तो मैं तो रिमझिम वर्षा में आऊंगा। कृष्ण भगवान रिमझिम हो रही वर्षा के बीच आए हैं, राम जी धूप में आए हैं। अरे आप यदि महलों में आए हो तो मैं महलों में नहीं, मैं जेल में आऊंगा, जहां दुनिया में अभी कोई नहीं आया वहां आऊंगा। कृष्ण जी जेल में आए हैं, संपूर्ण एकदम विरोधाभास। ध्यान से देखो भगवान की दिव्य झांकी को अवलोकन करो, देखो बड़े प्यार से देखो। अरे आप भादों के महीने में आए हो तो मैं भादों में नहीं, मैं आप यदि आप चैत में आए तो मैं भादों में आऊंगा। यदि आप शुक्ल पक्ष में आए, राम शुक्ल पक्ष में आए तो कृष्ण भगवान कृष्ण पक्ष में आए, अंधेर पक्ष में आए। शुक्ल पक्ष में आए तो हम कृष्ण पक्ष में आएंगे, बिल्कुल सारा इशारा का सारा विपरीत लीला का स्वरूप है। राम जी महाराज सदा आजीवन एक नारी सदा ब्रह्मचारी। भगवान कृष्ण बोले मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं ऐसा, तुमने संकल्प किया कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी और भैया हमसे तुमसे सब उल्टा ही उल्टा करेंगे तो कितने रखेंगे, 16,100 एकदम सब विपरीत। कृष्ण जी बोले आपको इच्छा हुई थी हम शास्त्र पढ़े, हम भी अपने चेले गुरु बनाए, कुछ हम भी कथा सुनाए, ठीक है हम गुरु के सामने, तुम गुरु जी के सामने आमने सामने होकर के आज तक जितनी कथाएं हुई, जितने प्रवचन हुए, जितने शास्त्र हुए वो सब आमने सामने बैठ कर सुनाए गए, लेकिन कृष्ण भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। उन्होंने कहा अभी तक वो सब आमने सामने होता रहा, राम और वशिष्ठ आमने सामने बैठे हैं, अर्जुन पीछे जा मैं उल्टा करूंगा। सभी काम उल्टे की तो सीधा क्यों होना चाहिए? चलो कृष्ण पीछे, कृष्ण को पीछे बैठाया पीठ के, हाँ वही तो बैठे हैं रथ में, कृष्ण को पीछे बैठाया और मुड़ के उपदेश देते हैं ऐसे एकदम बिल्कुल समस्त लीलाओं का मर्यादा। पुरुषोत्तम की लीलाओं को देखो और लीला पुरुषोत्तम की लीलाओं को देखो तो एकदम पार्थक्य है, विरोधाभास है, ऐसी लीलाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।
जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक भेर बिलिनी के खावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक भेर बिलिनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काल राम राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे प्रेम कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम,
राम राम राम, बोलो श्याम श्याम।
एक ताप संताप मिटावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, और ये दोनों पूरण का बोलो राम राम राम, बोलो राम राम
राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम,
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
की संगी राजे एक जान की संगी विराजे एक राधिका के संगी राजे एक जान की संगी विराजे चाहे सीताराम कहो चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम बोलो राम 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 बोलो राम राम राम
बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम
ओ जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो राम राम राम
बोलो राम 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 बोलो श्याम
बोलो राम
वृंदावन बिहारी लाल की नंदा पथि बचा शौर्य नंदा पथि बचा शौर्य नंदा पथि बचा शौर्य नामृषेति विचिन्तयन् नंदा पथि बचा शौर्य नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगामा शरणम् उत्पात गम संकिता सुखदेव जी विवेचन करते हैं राजन परीक्षित नंदा बची नंदा पथि बचा शौर्य आज सुना ध्यान से आज कंस ने पश्चाताप की अनुभूति की ध्यान देना कोई व्यक्ति कहीं त्रुटि करता है कहीं भूल करता है कोई चूक करता है यदि उसके अंदर पश्चाताप की जागृति हो जाए तो समझना कि सुधार की संभावना है हमसे कोई भूल हो जाए कभी भूल को छुपाने का प्रयास नहीं करना भूल को छुपाओ नहीं कोई गलती को छुपाओ नहीं यदि आपसे कोई भूल हो तो बोल दो हमसे भूल हो गई है हमसे त्रुटि हो गई है एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ता है एक चूक को छुपाने के लिए कई चूकें करते कई भूलें करते हैं यदि आप एक भूल को स्वीकार कर लो तो आपको कई भूलें कई झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे कंस ने जब वसुदेव देवकी के बंधन को तोड़ दिया हथकड़ी और बेड़ियों को तोड़ दिया तो पश्चाताप किया हमसे भूल हो गई हमें नहीं मालूम था कि देवता भी झूठ बोलते हैं हम तो उन देवताओं के कहने पर उस आकाशवाणी के कहने पर आपको जेल में डाला हथकड़ियां लगाई आपको बहुत दुख हुआ बहुत कष्ट हुआ और मैं राक्षस की तरह बुरी तरह से आपके छह छह पुत्रों को मार दिया हमें बहुत कष्ट हो रहा है मुझे बहुत अफसोस हो रहा है पर मैं क्या करूं ऐसा ही देवताओं ने बोला मुझे नहीं मालूम कि देवता भी झूठ बोलते हैं सो भगवान हमसे चूक हो गई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कंस ने स्वीकार किया हमसे भूल हो गई जिंदगी में कहीं भूल हो तो स्वीकार कर लो कहीं त्रुटि हो तो स्वीकार करो सुधार की संभावना बन जाती है और भूल पे भूल चूक पे चूक करते जाओ सुधरने की संभावना नहीं है कंस ने वसुदेव से माफी मांगी हमसे भूल हो गई है इधर गोकुल में ध्यान देना, इधर गोकुल में लाला कन्हैया बसदेव यशोदा मैया के पास में ब्रजांगनाओं के नन जितने भी बाल ब्रजबाल गोपाल गोपांगनाएं हैं उनके बीच में सभी उनका दिव्य दर्शन करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। सुखदेव जी विवेचन करते हैं कि आज बाबा नंद को मथुरा में कंस के पास जाना है कर देने के लिए। तो नंदा पथि बचा शौर्ये नाम शेति विचिंतयन हरिम जगामा शरणम उत्पात गम संकित। उत्पातों की आशंका अनिष्ट की आशंका से नंद बाबा ने ब्रजबाल ग्वाल बालों को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो मैं तो मथुरा जा रहा हूं। नंदा पथि बचा शौर्ये, अरे मैं तो अब मथुरा में जाऊंगा, तो आप लोग सतर्क होकर के ध्यान से गोकुल का संरक्षण करना है, सावधानी पूर्वक रहना यहां पर। हरिम जगामा शरणम उत्पात गम संकिता। इस प्रकार से क्यों प्रकट गए नंद बाबा, वो मथुरा में गए। कितनी सुंदर बात, जाकर के पहले बसदेव और देवकी को मिले। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है सुनकर के कि आपके 6 पुत्रों को मार दिया गया। ध्यान रखो, शिक्षा लो यहां से, किसी के पास मिलने जाओ तो अपनी गाथा गाना शुरू न कर दो, अपनी प्रशंसा अपने सुखों का बखान न करो। उसके पास जाओ, उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या परिस्थिति, उसको समझो, उसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए तब उससे बात करो, तब उससे चर्चा करो। नंद बाबा ने देखा कि इनके 6 पुत्र, अब ये न नंद बाबा को मालूम कैसे कौन आया, वो तो यही समझ रहे कि मेरे घर में बेटा हुआ है, हमारे घर में बेटा हुआ है, उन्हें ये बात नहीं मालूम है नंद बाबा को यशोदा मैया को कि ये देवकी का पुत्र है। ध्यान देना, विवेचन करने लगे, बहुत कष्ट है आपके 6 पुत्रों को मार दिया गया। सुनो ध्यान से, आपस में चर्चा हो रही है, आपस में कह रहे हैं कि कष्ट पड़े चिंता न करो, अरे कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं, अरे कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं, और फूल सदा कांटों में खिलते सेजों पर मुरझाते हैं। वसुदेव एक कष्ट सुख और दुख व्यक्ति के साथी हैं। आदमी दुनिया में जन्मता है, बाद में प्रारब्ध पहले बन जाता है। शंकराचार्य जी लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में, प्रारब्धम बलवत्तरम, अरे प्रारब्धम बलवत्तरम खलविताम भोगे न संचीयते। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, वो भोगने ही पड़ता है, सबको भोगने पड़ता है, सुख दुख सभी के साथ में जुड़े हुए हैं। सो आप बहुत दुखी न हो, हर व्यक्ति के साथ में सुख और दुख जुड़े होते हैं। कष्ट पड़े चिंता न करो, ध्यान देना, बहुत सुंदर बात। गुलाब के फूल को देखा आपने, गुलाब के फूल को देखा है, गुलाब की झाड़ में 12 महीना कांटा रहता है, कांटे गुलाब की झाड़ में 12 महीना कांटा होता है, कुल 1 महीना होता है दिसंबर का जो चल रहा है। आज के दिनों में देखो हर गुलाब पे फूल होगा, हर गुलाब पे पूरे साल कांटे रहते हैं, साल में 1 महीना होता है जब फूल आता है। और गुलाब की खासियत है ध्यान देना, गुलाब की खासियत है, गुलाब की ओर हाथ बढ़ाइए तो कांटे वहीं छोड़ देता है और केवल खुशबू लेके आता है, पराग लेके आता है, सुर भी लेकर के आता है, किसी के हाथ में आता तो सुर भी लेकर के आता है। ठीक, आप इसी प्रकार से सीख लो, सीख लो, हमारे अंदर जो पराग है, जो प्रेम है, जो सौहार्द है, जो सरलता है, जो सहजता है, जो मृदुता है, हम सहजता सरलता मृदुता को किसी को दें, अपनी कटुता को नहीं, दुखों को नहीं, समस्याओं को नहीं, उलझनों को नहीं। यदि आपसे कोई मिलने आता है तो अपना रोना धोना उलझने समस्या उसको मत सुनाओ। दोबारा फिर सुनो, इस दुनिया वालों को समस्याओं को सुनाओगे तो दुनिया वाले तुम्हारी समस्याओं को सुन करके तुम्हारी मखौल उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे। यदि अपनी समस्याओं को सुनाना है तो ऊपर वाले को सुनाओ, उसको सुनाओ, दुनिया वालों को नहीं, दुनिया वालों को नहीं। ध्यान देना मेरी बात पर, कोई समस्या है भगवान से कहो, परमात्मा से कहो, उनसे आवेदन निवेदन करो, दुनिया वालों से कभी नहीं कह देना भूल करके भी, भूल करके भी। अरे भाई, फूल के पीछे देखो कितने कांटे चुभे हुए हैं और कांटों को वो सहता है पर लोगों को हंस के दिखाता है। कैसे दिखाता है? कोई गम हो, गम हो छुपाओ, दुनिया को न दिखाओ, उस गम को परमात्मा को कहो। इस प्रकार से अच्छा संवाद है ये, लंबी चर्चा नहीं करूंगा, बहुत कुछ मैंने कहना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जब गोकुल से चले थे, नंद बाबा गोकुल से जब चले थे, गोपाल अरे गोपाल गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपे मथुराम गता, नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वहा। नंदा कंसस्य वार्षिक्यम, जो वार्षिक कर था, कर की बात करूं कि नहीं? वृंदावन बिहारी लाल, कर भी देना जरूरी है, बहुत पुरानी परंपरा है, राजा लोग कर लिया करते थे, आज सरकार कर ले रही है। हम कर छुपा रहे हैं, हम कर से बचते हैं, ये तो बहुत पुराना विधान है, कोई नई बात थोड़ी, सरकार ने अभी लागू नहीं किया है, ये बहुत पुरानी चीजें चल रही हैं। कर देने गए बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से ग्वाल वालों को सौंप करके कर देने गए हैं और कर का भुगतान करके नंद बाबा अभी मथुरा नहीं पहुंचे। ध्यान देना, अभी मथुरा नहीं, अभी मथुरा से गोकुल नहीं पहुंचे हैं, रास्ते में है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। सुनना, कैलाश में समाचार मिला भोले बाबा को, भोले बाबा को खबर मिली, क्या सूचना मिली भोले बाबा को? भोले बाबा को सूचना मिली कि भगवान का अवतार हो गया है, भगवान का पदार्पण हो गया है और भगवान विराजमान हो चुके हैं। मथुरा की जेल में भगवान ने जन्म लिया, इस समय भगवान गोकुल में पहुंच गए। सो भगवान शिव ने विचार किया, मैंने सभी स्वरूपों का अवलोकन किया है, दर्शन किया है, हमारी इच्छा है, लाओ भगवान कृष्ण का दर्शन का जरूर, मैं स्वरूप का जरूर दर्शन करूं। सो भोले बाबा ने सोचा, आप कैसे जाऊं दर्शन करने के लिए, संक्षेप कैसे जाऊं? नंदीश्वर को बुलाया, है नंदीश्वर मेरे साथ में चल, भगवान का दर्शन करना है। भगवान जो आज्ञा, बोले तुम तो मेरे चेले बन जाओ और मैं तुम्हारा गुरु जी बन जाऊं। संत का स्वरूप बनाया, योगी का रूप बनाया, कैलाश से भोले बाबा चले हैं, साथ में नंदीश्वर को ले लिया है। कहा देखो अब हम वहां चलेंगे, गोकुल में जाएंगे, डुगडुगी बजाएंगे, डमरू को बजाएंगे, और डमरू बजने पर जो जो होता रहेगा, हम तो बूढ़े बाबा लंबी दाढ़ी है आंखों से दिखता नहीं, ऐसा स्वरूप बनाऊंगा, हम तेरा भी ध्यान रखेंगे, तू मेरा ध्यान रखना। भोले बाबा क्या बोले, हम तेरा ध्यान रखें तू मेरा ध्यान रखना, दोनों मिलजुल के अपना कल्याण कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, एक दूसरे का ध्यान जरूर रखा करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सो भगवान कैलाश से चले गोकुल में आ गए जल्दी जल्दी। जब भगवान गोकुल में पहुंचे, भगवान ने डमरू बजाया, दासी ने झांका, अरे कोई बाबा आए हैं, कोई बाबा आए हैं। और उधर जब डमरू बजा तो कन्हैया नंदनंदन मुरली मनोहर परना में लेटे हुए हैं, जो डमरू की धुनी कान्हा के कर्ण रंध्रों में पड़ी, कानों में पड़ी, तो कान्हा चौंक गए, विभुल हो गए, आनंदित हो गए, मस्त हो गए, पल्ले में कूदने लगे, छलांगे मारने लगे, उछाले मारने लगे। कन्हैया को बहुत आनंद, बहुत आनंद, अरे मेरे कितने पुराने इष्ट देव आ गए, हमारे इष्ट देव पधारे हैं, अब तो मुझे दर्शन करना है, अब तो मुझे दर्शन करना है। कन्हैया ने सोचा पता नहीं मैया आने देगी बाबा को कि नहीं आने देगी, अब मैं क्या करूं, दर्शन की तो मुझे बहुत इच्छा है, बड़ी लालसा है, कैसे दर्शन करूं, कैसे दर्शन करूं भगवान का, भोले शंकर का दर्शन कैसे करूं, किस कोई विधि। कन्हैया लाला की एक सूझ आई कि दर्शन इसी तरीके से हो सकता है। यशोदा मैया ने लाला को गोद में लिया था, और लाला को जब गोद में लिया था तो लाला अचेत हो गई, गोद में श्वास रोक ली, अचेत हो गए। और जब अचेत हुए तो सखी को आवाज दी कन्हैया को कुछ हो गया, लाला अचेत। वो सखी बोली, दासी बोली, अरे नीचे योगी आए हैं, उसे झाड़ा लगवा लो, उसे झाड़ा लगवा लो। यशोदा मैया ने कहा तुरंत लाओ, फिर तुरंत उनको बुलाया गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान। यशोदा मैया बोली अभी अभी पता नहीं मेरे लाला को क्या हुआ, सो लाला मेरा अचेत हो गया, इसने आंखें बंद कर ली, जम्भाई लेके आंखें बंद कर ली। भगवान बोले भोले बोले कि इसको तो मुझे अपनी गोद में लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं, आप ऐसे झड़ा नहीं दे पाएंगे। सो भोले शंकर ने लाला को गोद में लिया है, कन्हैया को गोद में लिया है, और गोद में लेकर के बड़ा लाला का प्यारा स्वरूप है, लाला का करकमल बड़ा कोमल है, मुखमंडल बड़ा ही लावण्य युक्त है, माधुर्य युक्त है। भगवान का एक एक अंग इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना माधुर्य, एक एक अंग से वो लालिमा टपक रही है। भोले बाबा ने भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप को देखा, हृदय में गदगद हो गए, गदगद हो गए, और गदगद होकर के भगवान का चरण पकड़ा, और चरण को लेकर के अपने माथे पे घुमाने लगे, अपने माथे पे लगाने लगे, अपने हृदय में लगाने लगे। यशोदा मैया बोली क्या कर रहे हो, ए बाबा झाड़ा दो कि ये कन्हैया का चरण लेकर के अपने सिर पे घुमा रहे हो। बोले मैया मेरी यही विधि झाड़ देने की है, लगवाना तो लगवा नहीं तो रहने दे, मैं जाता हूं। ना 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 ठीक 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 ठीक, लेके ऐसे ही कर दो फिर मेरा लाला ठीक हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लाला को ऐसे लिया है और दो चार बार मुख पे लाला का चरण घूमा। अरे लाला का चरण जब ऐसे घूमेगा तो समस्या दूर हो जाएगी, अलाय बलाय दूर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लाला कन्हैया चुटकी मारते ही मुश्की मारने लगे। यशोदा मैया बोली जब मेरी लाला की रेखा तो देखो, कोई समस्या तो नहीं, कोई उलझन तो नहीं है, शो रेखाएं देखी। रेखाएं क्या देखी? बोले बात यह है मैया, हम तो बूढ़े हो गए, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये जो मेरा चेला है ना, नंदिया ने मन में सोचा, संकेत वही काम बना लिए, लाला का चरण कमल अपने सिर पे घुमा लिया, चेहरे पे घुमा लिया, अपना तो काम बना लिया इन्होंने, और हम ऐसे ही चुपचाप सूखे बैठे हैं। शिव भगवान बोले नंदी सुखी ओर देख करके, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हमको तो आंसू से दिखता नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, हमारा चेला है ना, ये चेला रेखा देखता है, उसका जो फल है मैं बता देता हूं। रेखा चेला देखेगा, उसका फल हम बतलाएंगे। अब लाला कन्हैया को नंदीश्वर की गोद में दे दिया, रूप बदल के गए ना नंदीश्वर। उन्होंने ऐसा हाथ लिया और हाथ को लेकर के देखा, और नंदीश्वर ने अपना कन्हैया का हाथ अपने सिर पे रखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब सिर पे रखा तो भैया ब्रह्म बोध हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लौटाओ, संक्षेप करें, बहुत आनंद, अति आनंद। दर्शन वगैरह करने के बाद में लीला को संक्षेप करता हूं। ये सब होने के बाद में यशोदा मैया ने बाबा को भिक्षा दी है, बहुत आशीर्वाद दिया है, और बाबा जी वहां से प्रस्थान किए, पुनः कैलाश में आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ भगवान शंकर।
गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मति वाला, गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मति वाला, अलक निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलक निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, शिवाय हरि ओम नमः शिवाय।
श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए,
छमक छमा छम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए,
छमक छमा छम नाचे जोगी तरस मन में चाह लिए,
पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला, गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मति वाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय हरियो नमः शिवाय। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी,
अपने लाल का दर्श करा दे योगी ने मन में ठानी,
अपने लाल का दर्श करा दे जोगी ने मन में ठानी।
लाख हटाओ पर ना मानो, लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। लाख हटाओ पर ना मानो,
देखूंगा तेरा लाला।
ओ नमः शिवाय करियो नमः शिवाय,
ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए।
अति विभोर हो शिव शंकर ने बाल कृष्ण की दर्श किए।
अति विभोर हो शिव शंकर ने बाल कृष्ण की दर्श किए।
पंच वेद पर कम्मा करके सिंगी नाद बजायो।
अहो बकीयं स्तन कालकूटम् जिघांसया पाए दप्य साधी ओले बेगत्र धातृजिताम् ततोन्याम् कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। ध्यान से सुनो, सुखदेव जी महाराज विवेचन करते हैं राजन परीक्षित। सुनो ध्यान से, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। राजन सावधान, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। आज पूतना ने, पूतना गोकुल में आती है, ध्यान देना। पूतना, पूतना शब्द का अर्थ होता है पूत ना, पूतम पवित्रम, सुनना ध्यान से, पूतम पवित्रम ना इति पूतना, पूतम पवित्रम ना नहीं, जो पूत नहीं है, जो पवित्र नहीं है, जिसका हृदय जिसका दिल कलशों से भरा है, मलमालिन्य से भरा है, वासनाओं से भरा है, विकारों से भरा है, सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित वही पूतना है। ध्यान देना, पूतम पवित्रम ना इति पूतना, जो पवित्र नहीं है, जिसके अंदर वासनाओं का भंडार है, अनेक वासनाओं से संलिप्त है। हम थोड़ा इस प्रसंग का आपको आध्यात्मिक अर्थ बतलाएं। सुनो ध्यान से, सुनो कथा पक्ष बाद में कभी कभी आध्यात्मिक पक्ष सुनो, किसी चरित्र का व्यवहारिक अर्थ सुनो, किसी चरित्र का पारिवारिक अर्थ सुनो। आइए आध्यात्म देखो, पूतना का विवेचन करते हैं। बड़ा सुंदर विवेचन है। बोले यह जो पूतना है गोकुल में आई, और जब गोकुल में आई उस दिन तिथि क्या थी? 14। क्या थी? 14 के दिन, अष्टमी के दिन तो भगवान का जन्म हुआ है। क्या हुआ? अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ, और 14 के दिन, 14 की तिथि में पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। एक पूतना 14 को ही क्यों आई? त्रयोदशी को क्यों नहीं आई? द्वादशी को क्यों नहीं आई? दशमी को क्यों नहीं आई? ये 14 को ही क्यों आई? चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी तिथि में पूतना आई। इसका अर्थ समझो। सुंदर बात, इस कथा को जरा थोड़े अपने पास लाओ, नजदीक लाओ, अपने में झांको। इस कथा को, इस चरित्र को अपने में झांको, ध्यान से, तन्मयता पूर्वक, मस्तिष्क पर बल देकर के थोड़ा चिंतन करो, विचार करो कि पूतना 14 के दिन आई है। 14 क्या है? 14 का अर्थ होता है पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, चित, बुद्धि, अहंकार। कितने हो गए? 14। ध्यान देना, यह जो 14 हैं, यह जो 14 हैं, ये 14 बड़े खतरनाक हैं। हमारे अंदर पूतना प्रवेश कब करती है? ध्यान देना, हमारे अंदर वासना प्रवेश कब करती है? हमारे अंदर कुवासना कब आती है? हमारे अंदर कुवासना, दुर्वासना, वासना, विकृति, विकार तभी आता है जब हमारी पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 14 के 14 गफलत में होते हैं। ध्यान देना, बाबा नंद मथुरा में गोकुल में नहीं है, गायें घास चुगने गई हैं। कथा पक्ष, गायें घास चुगने गई हैं, बाबा नंद है नहीं। पूतना प्रवेश करती है गोकुल में, कथा पक्ष, अध्यात्म पक्ष। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना इस पक्ष को, बहुत प्यारी बात है। इस 14 की तिथि में पूतना ने प्रवेश किया है इस जीव के अंदर, जो जीवात्मा है, जीवात्मा, इस जीव के अंदर तभी वासना आएगी, तभी कुवासना आएगी जब आप गफलत में होंगे, जब आप असावधान होंगे, सावधान नहीं होंगे, तब ये वासना आती है। ध्यान देना, गोकुल में आई। कहां आई? ये शरीर आपका गोकुल है। क्या है? ध्यान देना, पूरा चरित्र अपने में घटाओ। ये शरीर आपका गोकुल है, और गोकुल के ठीक बीचों बीच नंद भवन है। कभी गए गोकुल में? आप गोकुल में गए होंगे तो आपने देखा होगा पूरे गोकुल के बीच में नंद भवन है। तो यही शरीर गोकुल है, उस गोकुल के अंदर नंद भवन है, और इस नंद भवन के अंदर अंदर कृष्ण विराजमान है। कौन विराजमान है? कृष्ण। हम स्वयं नहीं कह रहे हैं, गीता में कहा गया है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे मैं कहां रहता हूं? भगवान बोले हृदय से। ये भगवान खुद कहते हैं कि मैं यहां रहता हूं। ये क्या है? नंद भवन। ध्यान देना, ये नंद भवन है। इस नंद भवन के अंदर, इस गोकुल रूपी शरीर के बीचों बीच हृदय नंद भवन है। हृदय रूपी नंद भवन में चेतना रूपी कृष्ण रहते हैं। चेतना रूपी कृष्ण रहते हैं। ध्यान देना, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ कि वो जो चेतना रूपी कृष्ण है उस पर कई प्रहार तो नहीं हो रहा है। हमारी चेतना है, उस चेतना पे कई प्रहार तो नहीं हो रहा है, कई पूतना तो दौड़ी नहीं आ रही है। ध्यान देना, जब पूतना ने प्रवेश किया तो सारे ग्वाल बाल ब्रजबाल गफलत में हैं और पूतना ऐसा रूप बना के आई, ऐसा रूप बना के आई है। हेलो, मेरा दिमाग चला गया रामायण में, बात करते ही करते ही जाकी देखो एक रावण की भी भावी समस्या ऐसी है। राम को वनवास, यहां 14 की बात आ रही है ना, राम जी को वनवास कितने वर्षों का हुआ? 14 वर्ष का। यहां भी 14 और वहां भी 14। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, 12 का क्यों नहीं हुआ, 11 का क्यों नहीं हुआ, 14 का क्यों हुआ? ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात, बहुत अच्छी बात। रावण 14 जगह पे रहता है। कहां रहता है रावण? 14 जगह पे रहता है। पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 14 रावण के रहने की जगह हैं। और इस 14 जगह रहने वाले रावण को राम मारेंगे। राम क्या करेंगे? मारेंगे। इसलिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। आइए, उधर भी 14, इधर भी 14। लंबी व्याख्या ना करूं, बोलो, बहुत कथाएं कहनी है, कहो तो बढ़ा दूं, कहो तो घटा दूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, रामायण में रावण 14 जगह पे रहता है, भागवत में पूतना 14 के दिन आती है। ये पूतना कैसे घुसी गोकुल में? ये पूतना तब घुसी जब ग्वाल ग्वाल गफलत में थे। और एक आपको बात बताऊं, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से मेरी बात को। गफलत में थे, दूसरी बात, पूतना ने ऐसा रूप बनाया, ऐसा रूप बनाया, बड़ा विलक्षण रूप बनाया। बड़ा विलक्षण रूप बनाया। रूप बनाकर के जब पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया तो किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि ये बालघातनी होगी, कि ये बालघातनी, बालघातनी होगी। किसी ने सोचा भी नहीं, किसी ने विचारा भी नहीं। सभी रास्ता दी, जाने दो, जाने दो, जाने दो, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत सुंदर है, इसको देखो ना। अरे भैया, हमको तो लगता है, भैया ग्वाल बालो, हमको तो ये लगता है कि साक्षात ये नारायण की पत्नी लक्ष्मी ही यहां मिलने आई है अपने देवता से। जाने तो रोको मत। कैसा देखो, कमल पकड़ा हुआ है बढ़िया सुंदर हाथ में, रूप बनाया ना उसने, क्या बनाया? रूप बनाया है, इतना अच्छा रूप बनाया है, बहुत सुंदर रूप बनाया है। यहां लिखा है उसका रूप बड़ा विलक्षण है। ध्यान देना, एक बड़ी अच्छी बात आपसे कहने जा रहा हूं। आदमी धोखा खाता है। पूतना कैसे आई? बन के। कैसे आई? जैसी है वैसी नहीं आई, बन के आई, बन करके आई। ध्यान देना, शिवपनखा राम के पास कैसे गई थी? बन करके। रावण राम, रावण सीता के पास कैसे गया था? बन करके। ताड़का कैसे गई? बन के। चुपनखा कैसे गई? बन करके। मारीच कैसे गया? बन करके। ध्यान देना, चिंतन करो, आध्यात्मिक पक्ष कह रहा हूं, आध्यात्मिक पक्ष है। रावण बन करके जाता है, पूतना बन करके जाती है, मारीच बन करके जाता है। जो जो भगवान के पास बन करके गए, ध्यान देना, पूतना बन करके गई, अभी हाल होने वाला है क्या आपको सुनने को मिलेगा। शूपनखा बन के गई, राम ने उसके नाक कान साफ कर दिए। रावण बन करके गया, भगवान ने उसका भी, मारीच बन के गया, भगवान ने उसका भी, ध्यान देना, हम कभी भी भगवान के पास बनकर के नहीं जाएं। भगवान को पाखंड प्रिय नहीं है, भगवान को बनावट प्रिय नहीं है। भगवान कहते ये मेरे प्रिय भक्तों, ये मेरे प्रिय प्यारे साधकों, तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, जैसे हो। और देखो ना, दूसरी झांकी देखो, क्या शिबरी बनकर के गई, क्या भेलिनी बनकर के गई, जैसी थी वैसी तो चली गई। और सदना कसाई, सदना कसाई क्या बनकर के गया था, जैसा था वैसा ही चला गया। और पिंगला नाम की वैश्या क्या बन के गई, जैसी थी पिंगला वैसी चली गई। सदना कसाई जैसा था वैसा चला गया, ये सारे के सारे जैसे थे वैसे ही चले गए। ध्यान देना, आध्यात्मिक पक्ष है कि भगवान के समक्ष प्रस्तुत हो तो बन के नहीं, पाखंड नहीं, बन करके नहीं, जैसे हो वैसे ही चले जाओ, वैसे ही चले जाओ। शिवपनखा बन के गई क्या भगवान नहीं पहचाने, पूतना बन के गई क्या भगवान नहीं पहचाने, मारीच बन के गया क्या भगवान नहीं पहचाने, रावण गया क्या भगवान नहीं पहचाने। सबको पहचान लेते हैं, बनो मत, बनो बनो मत। ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि बनो नहीं, जैसे हो वैसे, जैसे हो वैसे। बनावट पर बहुत खुश न हुआ करो, आज दुनिया में बनावट बहुत चल रही है। सब व्यापार सैंपलों से होता है, सैंपल दिखाइए, नमूना दिखाइए, व्यापार कीजिए। आज आदि नमूना दिखाता है, असली माल तो वही रहता है, नमूना दिखाता है। ध्यान देख, ध्यान देना, अरे भैया शिवरी का नमूना कैसा है, महात्मा गांधी का नमूना कैसा है, सैंपल कैसा है, सैंपल बहुत अच्छा नहीं है। भीलनी कैसी है, अरे काली कलूटी बैगन लूटी, रूप बहुत अच्छा नहीं है, चेहरा भी भस्म, रंग काला, बड़ा विलक्षण स्वरूप है। पिंगला का देखो, सुदना कसाई का देखो, सैंपल बहुत अच्छा नहीं है। अरे अंदर शूपनखा को देखो, इनको देखो और इनको देखो, दोनों में कितना पार्थक्य है। ध्यान देना, भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। पूतना बनकर के गई, बड़ी सुंदर बात कही कि भैया रीझ मत जाना, रीझ मत जाना, अरे रीझ मत जाना बाहर की सफाई पे, और बर्क सोने का लगा गोबर की मिठाई पे। रीझ मत जाना, अरे बाहर की सफाई पे, और बर्क सोने का लगा गोबर की मिठाई पे। अंदर गोबर भरा हुआ है ऊपर से बढ़िया, अरे अंदर माल भरा गंदा। अंदर तो वासना कुवासना दुर्वासना है, और ऊपर से बढ़िया सुंदर कलेवर कर रखा है। सावधान रहो, सतर्क रहो, पूतना बनकर के गई, भगवान ने पहचान लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे गीत को देखो ना, राम के पास गीत गया, गीत गया, भगवान ने क्या किया, भगवान राम ने, वो कभी व्रत नहीं करता है गीत, गीत न व्रत करता है, न जाप करता, न भजन करता है, बस यही करता है कि सीता की सेवा करता है। और सेवा करते करते प्राण त्यागने की नौबत आ जाती है, पर पीछे हटता नहीं है। राम ने देखा तूने बहुत बड़ी सेवा की है, सीता को बचाया। राम ने, ध्यान देना, मरते पिता को छोड़ के चले आए, लेकिन मरते गीत को गोद में उठाया। ध्यान देना, गोद में उठाया और गोद में बिठाया। राम जी ने सोचा ये जटायु के बहुत जखम है, ऐसा रावण ने तलवार मारा, इसमें सीधा सीधा ऐसा अपना हाथ से इसका जखम साफ करूंगा, इसको चोट लगेगी, दर्द होगा। सो राम ने अपना जो जटाएं बनाई थी ना, जटाएं खोली, और जटाओं को खोल करके राम जी ने जटाओं का बुरुष बनाया, बुरुष बनाया। कहा है
कि जटायु की धूल जटाओं से झारी। राम जी ने जटायु की धूल जटाओं से झारी, अपनी जटाओं को खोल करके जखम को साफ किया और कहा भैया गीद अब हम तेरे को जैसा कहा तैसा कर दूं, स्वस्थ कर दूं। जटायु ने कहा कि भगवान आज हमको आपने गोद में लिया है, अपना प्यार का हाथ मेरे सिर पर फेरा है, सबसे ऊपर आपकी जटाएं हैं, उन जटाओं को खोल करके आपने मेरा जख्म साफ किया है, आज आपकी गोद मुझे मिली है और मेरा प्राण अंत हो रहा है। भगवान आज के जैसा दिन शायद जिंदगी में कभी ना आए, कभी ना आए। मेरे प्रभु अब मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ, मेरे दीन बंधुदाता करुणा वरुणालय अब तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके गोद में बैठे बैठे ही मेरा प्राणांत हो जाए। भगवान की गोद में जटायु की सदगति हुई, सदगति हुई। ध्यान देना ये भक्ति है, ये भक्ति है। बड़ी सुंदर चर्चा है कि आप कैसे बने अच्छे बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए दत्त साधी लेभे गत धात्री उचित उत्तुन्याम कंबा दयालम शरणम ब्रजेव। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकीयम हृदय टेढ़ा है, बक्र है, कुटिलता है। पूतना ने लिख रहे हैं भागवत में, वेदव्यास जी सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, भगवान को मारने की दृष्टि ने पूतना ने अपने स्तन में जल को लपेटा है, जाऊंगी पिलाऊंगी मर जाएंगी। हम वचन दे के आई हूं अपने भाई कंस को मारना है, मैंने कंस कृष्ण को मारना है, तो ऐसे भाव से आई है। देखना दुनिया में लोग तीन प्रकार के होते हैं। एक आदमी अंगूर की तरह होता है, कैसा होता है? अंगूर को देखो अंदर बाहर एक सा। एक व्यक्ति अंगूर की तरह होता है और एक आदमी आम की तरह होता है, ऊपर से देखो मुलायम मुलायम पका हुआ टपका, अंदर गांठ है, अंदर गांठ है। एक आदमी बादाम की तरह होता है, ऊपर से कठोर होता है अंदर से मुलायम होता है, अंदर से। पूतना कैसी है? इन तीन में पूतना कैसी है जरा बता दो आप थोड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक तो आदमी अंगूर की तरह होता है, अंदर बाहर से बहुत सरल, अंदर से सरल, बाहर से भी सरल। एक आदमी बादाम की तरह होता है, अंदर से सहज ऊपर से कड़क। एक आदमी आम की तरह होता है, जैसे आम होता है, आम ऊपर से मुलायम अंदर से सख्त। तीन श्रेणियां हैं व्यक्तियों की। पूतना कैसी है? का भाई जो पूतना है वो आम की तरह है। कैसी है? आम की तरह है, अंदर से तो उसके जहर है और बाहर से बढ़िया सुंदर, क्या बढ़िया रूप बना करके आई है, और बढ़िया रूप, सुंदर रूप बना के आई है। ऐसा अच्छा रूप ब्रजवासी समझ ही नहीं पाए, ब्रजबाल समझ ही नहीं पाए। कोई बाल ब्रजबाल समझ नहीं पाए कौन है। सबने अंदर प्रवेश कराया, जाइए चले जाइए। ध्यान देना हम अंदर से स्वच्छ बने, पवित्र बने, पावन बने, वासना से रहित होकर के बने। दुर्वासना कुवासना अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे कपड़े एक बार गंदे भी चलेंगे, हो सकता है नहीं धो पाए कोई बात नहीं, बिना धुआ भी चलेगा, लेकिन अंदर का प्रक्षालन होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। यदि अंदर से धुले हुए नहीं होंगे तो समस्या है। अंदर से धो। कई बार आदमी सुनना ध्यान से, कई बार आदमी बहुत बहुत ऊंचा उठ जाता है। एक गीद कितना ऊंचा उड़ता है, कितना ऊंचा उड़ता है।
बताया गया गीद के जितनी ऊंचाई पर उड़ने वाला कोई जीव नहीं है। सबसे अधिक रामायण में लिखा है चंपाती इतना ऊंचा उड़ा कि सूरज पर पहुंच गया और चंपाती के उसके धूप से हीट से पंख गल गए, वो जमीन पे गिर गया, इतना ऊंचा उड़ गया। ऊंचा तो उड़ता है गीद, ऊंचा उड़ता है, लेकिन अफसोस की बात है ऊंचा उड़ने के बाद वहां से देखता क्या है। मां तो देखने का है कि ऊंचाई से देखता क्या है। गोस्वामी जी कहते इतना ऊंचा उठने के बाद भी वो सड़ागला मांस देखता है। क्या देखता है? सड़ागला मांस देखता है, उसकी दृष्टि मांस पर होती है। कोई जरूरी बात नहीं है कि जो जितनी ऊंचाई पे होता है आदमी हवाई जहाज में कहां ऊपर उड़ के पहुंच जाता है, तो कोई जरूरी बात नहीं कि हवाई जहाज इतनी ऊंचाई पर है तो उतना विचारों से भी ऊंचा होगा, कोई आवश्यक बात नहीं है। अरे हवाई जहाज में उड़ने वाला कोई जरूरी नहीं है कि जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है विचारों के स्तर पर उतना ही वो ऊंचा हो। हो सकता है पैदल चलने वाला व्यक्ति उसकी तुलना में ज्यादा अच्छा विचारवान हो सकता है, ज्यादा विचारवान हो सकता है। ध्यान रखना हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। ऋषभ देव जी महाराज बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। जड़भरत जी महाराज का बाहरी रखरखाव स्वरूप बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अंदर से बहुत स्वच्छ थे। ऋषभ देव जी अंदर से बहुत स्वच्छ थे, जड़भरत जी अंदर से बहुत स्वच्छ थे। हम अंदर से स्वच्छ बनने का प्रयास करें। ध्यान देना पूतना अंदर से अच्छी नहीं है, बाहर से अच्छी दिखती है। पूतना अंदर से अच्छी नहीं है, बाहर से तो बहुत अच्छी दिखती है। अंदर माल भरा गंदा। अरे भाई सुंदरता को देख के रीझ नहीं जाना, अरे रीझ मत जाना बाहर की सफाई पे और बर्क सोने का लगा गोबर की मिठाई पे। सतर्क रहे ना, सावधान रहे ना। जो जितनी अच्छी चीज है ये बनावट तो बनावट होती है, सच्चाई सच्चाई होती है। पूतना बहुत अच्छी बनके गई और कहां गई? ध्यान देना कहां गई? नंद भवन में। किससे मिल रही है? यशोदा से। किससे मिल रही है? यशोदा का मतलब क्या है? यशो ददाती इति यशोदा, जो अपयशी को भी यश देती है। क्या करती है? किसी किसी खासियत होती है, किसी किसी का वैलक्षण होती है, होता है किसी किसी विशेषता होती है कि वो अपयशी को भी, गंदे को भी, बुरे को भी अच्छा बना देता है। गंगा मैया में शराब की बोतल उड़ेल दो और गंगा मैया का गुण है कि शराब को भी अपना जैसा बना लेती है। गंगा में मुर्दा फेंक दो, मलमूत्र फेंक दो, लेकिन गंगा मैया अपने जैसा गंगा मैया बना लेती है। ये विशेषता है, हर बुराई को अच्छाई में ढाल देती है। ध्यान देना यशोदा मैया का नाम ही है। यशो ददाति इति यशोदा, किम नाम यशोदा? यशोदा क्या है? बोले जो यश को देता है। अपयशी भी यदि मैया के पास चला जाए तो इसको भी यश मिल जाता है, कीर्ति मिल जाती है, मान मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। यशोदा सबको मान देती, सम्मान देती है। अरे पूतना जैसी घृणित दुष्टवृत्ति को लेने लेकर के जाने वाली, अपने स्तन में जहर लगा के ले जाने वाली, अरे पूतना को भी, उस पूतना को भी यशोदा मैया ने यश दिया है। क्या दिया है? ध्यान देना, हम अपने आचरणों से, हम अपने व्यवहारों से, हम अपने क्रियाकलापों से, हम अपने पूजा से, हम अपने जाप से, हम अपने भजन से, हम अपने सत्संग से इतने ऊर्जावान बन जाएं, इतने श्रेष्ठ बन जाएं, हमारी साधना इतनी बढ़े, हम में इतनी महानताएं आ जाएं। ध्यान देना, हम में इतनी महानताएं बन जाएं कि मेरे पास आने वाला विकृत व्यक्ति भी हमारे सानिध्य में आकर के अच्छा बन जाए। कैसा बन जाए? हो सकता है हो सकता है। ऐसी बात मत समझना कि हम नहीं बन सकते, आप क्या नहीं बन सकते, सब कुछ बन सकते हैं। एक बार यत्न करो, प्रयत्न करो। भगवान कहते बनने का प्रयास करो। बात बहुत लंबी हो रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ध्यान देना, यशोदा मैया के पास पहुंची। कौन? पूतना। मैं अर्थ कर चुका हूं पूतना का। पूतना का मतलब क्या होता है? पूतम पवित्रम ना इति पूतना, जो पवित्र नहीं है, जो पवित्र। दूसरा लौकिक अर्थ किया कि पूतम पुत्रम, पूतम पुत्रम ना इति पूतना, जिसको पुत्र ही नहीं है वो पुत्र की ममता क्या करेगी, वो तो डायन है मार देगी, वो तो डायन है मां, उसे पुत्र का क्या ममता, तो पुत्र के सुख को वो जानती ही नहीं है, पुत्र के सुख को ममता ही नहीं है, उसमें वात्सल्य भाव ही नहीं है, अरे वो तो मारेगी क्या करेगी। मां को ममता होती है, जो मां पुत्र को जन्म देती है वो जानती है कि पुत्र क्या होता है, अरे पुत्र को कोई पुत्र ही नहीं है। पूतम पुत्रम ना इति पूतना, जिसको पुत्र नहीं है वही तो पूतना है, वही तो। कई अर्थ किए गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भैया पूतना अंदर गई है, यशोदा मैया से मिली है। जब यशोदा मैया से मिली, मैया ने पूछा देवी आप कहां से आई हैं? अरे मथुरा से आई हैं। कौन है, क्या परिचय है आपका? अरे मैं मथुरा की ब्राह्मणी हूं, हमारी खासियत हमारा परिचय, इस किसी भी बालक को मैं एक बार गोद में ले लूं और लेकर के अपना पैपान करा दूं तो वो बालक कभी बीमार नहीं पड़ता है, रोगी नहीं होता है, हमेशा सदा सर्वदा स्वस्थ रहता है। ये हमारी खासियत है, विशेषता है। यशोदा मैया बोली तो बहन एक काम करो ना, ये मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक बार अपना दूध पिला दो मेरी लाला को आप। फिर लाला को दूध पिला दो एक बार। जब दूध पिलाने की बात कही और तुरंत मैया ने लाला कन्हैया को अपनी गोद से लिया और पूतना की गोद में दे दिया। लाला मैया में कोई छल नहीं है, निश्चलता है, निष्कपट है। मैया यशोदा ने लाला को पूतना की गोद में दे दिया और दे करके मैया वहां से चली गई। जब पूतना गोद में कन्हैया को लेती है अंदर से बड़ी खुश होती है, भैया मैं तेरा काम करने आई थी और अब तेरा काम कर लूंगी, ठिकाने पर पहुंच गई हूं, तू चिंता नहीं करना, तू अपनी बहन पर विश्वास करना, मैं तेरा काम जरूर करूंगा, जरूर करूंगी। पूतना ने लाला कन्हैया को गोद में लिया है और जब गोद में लिया भगवान ने सोचा अब मैं क्या करूं, इसको देखता हूं तो समस्या है, देखूंगा तो प्रीतिर नहीं होगा, तो देखने से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, और देखने के बाद प्रेम करने के बाद किसी को मारो तो विश्वासघात होता है, इसलिए को देखना ही नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली। भगवान ने किसी ने कहा भाई इसलिए भगवान ने आंखें बंद की कि भगवान तो गोकुल में माखन मिश्री खाने आए, दूध पीने आए, घी खाने आए, मक्खन खाने आए। भगवान ने सोचा कहां ये दुष्टा आ गई है, जहर खिलाने के लिए जहर लगा के आई है, हमारा काम जहर पीना नहीं है, हमारा काम तो माखन मिश्री खाना है, दूध पीना है। भोले बाबा तुम जहर पीने के आदि हो, शिव भोले बाबा हमें थोड़ी ताकत दो, अभी पिलाने को बैठे गई है तो कोई बात नहीं, हम भी जहर को पचा जाएं। से भगवान आंख बंद करके शंकर का ध्यान करने लगे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अनेक भाव यहां पर ऐसे हैं, अनेक भाव। अनेक ऐसे भाव आए कि भगवान को जब गोद में लिया है तो पूतना ने भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना ने भगवान को जब गोद में लिया तो भगवान ने आंखें बंद की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने सोचा अच्छी वस्तु का दर्शन करना चाहिए, क्या इसका दर्शन करो बाल घातनी, इसने सैकड़ों बच्चे मार डाले। अभी तक सैकड़ों बच्चे इसने मारे, प्रत्येक गांव में गई है, इसने एक महीने के जितने बच्चे सारे मार दिए। महाबाल घातनी है, महापापिनी है, इस पापनी का दर्शन कर क्या करना है, अच्छी बात आंखें बंद ही रखो। पूतना ने सोचा अपना काम जल्दी करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, और भगवान ने पैपान करना शुरू किया। जब भगवान ने पैपान करना शुरू किया, भगवान पैपान कर रहे हैं, ध्यान देना, दुग्ध का पान करते करते भगवान ने सोचा कि पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं, काम पूरा करके छोड़ता हूं। पूतना खूब जोरों से जब भगवान ने उसका पैपान किया तो पैपान तो किया ही किया, लेकिन साथ में भगवान ने प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जब प्राणों को खींचना शुरू कर दिया, प्राण उसके खींचना शुरू हो गए तो बड़े जोर से पूतना चिल्लाई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या चिल्लाई? अरे सामंच मुंचा मिति प्रभाषिणी अनुष्पी दिमाना खिल जीव मर्मणी, सामुंच मुंचा मिति प्रभाषिणी और निष्पीड दिमाना खिल जीव मर्मणी। सामुंच मुंच अरे मेरे को छोड़ दे। निष्पीड दिमाना, बड़ी मेरे को पीड़ा हो रही है, खिल जीव मर्मणी, मेरी मृत्यु ही जा रही है, मैं मरी जा रही हूं, जल्दी छोड़। भगवान बोले पकड़ लेता हूं पर जल्दी नहीं छोड़ता हूं, काम करके छोड़ता हूं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान ने ऐसा पकड़ा और पकड़ करके प्राणों को पिया, और पीते पीते भगवान ने सोचा अब तो ये काम गड़बड़ ही होने वाला है। जब कोई असुर मरता है तो अपने रूप में आता है, किसमें आता है? ये दुष्ट आदमी बड़ा विचित्र होता है, दुष्ट से पाला नहीं पड़ना चाहिए। पूतना बहुत दुष्ट है, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात। दुष्ट आदमी की रग रग में दुष्टता भरी होती है। भगवान ने सोचा इसको मारने के अलावा और कोई चारा नहीं है, दुष्ट आदमी हमेशा दुष्टता बरतता है। कई लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। एक दुष्ट आदमी एक गांव का ऐसा ही अशिक्षित अनपढ़ द्वेष रखने वाला आदमी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से द्वेष कर लेता है, पूरे गांव को सताता है, मुश्किल समस्या में डाल देता है। हुआ क्या कि जब वो रास्ते में चलता है तो डंडा रखता है, कभी उस बैल को मारना, कभी उस व्यक्ति को पीछे यूं कर देना, सब गांव को तंग करना। गांव उससे बड़ा दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया। जब वो मरने लगा उसने पूरे गांव को बुलाया, देखो भैया जिंदगी भर अब मुझे महसूस हुआ, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि जिंदगी अच्छी नहीं व्यतीत की, मैंने बहुत जिंदगी भी बहुत बुरी व्यतीत की, तुम लोगों को बहुत सताया, बहुत तंग किया, अब मैं मर रहा हूं, क्या करूं, प्राण निकल रहे हैं, बस तुमसे एक ही प्रार्थना है, इस वाणी ने तुमसे बहुत बुरा बोला है, इन हाथों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरे व्यवहार किए, देखो अब मैं मर रहा हूं, प्राणांत हो रहा है, तुमसे एक प्रार्थना है कि जब मैं मर जाऊं तो इस मेरे मुख में खूंटा ठोक देना। खूंटा समझते हो, मेघ, मेघ ठोक देना, जब मैं मरूं तो मेघ ठोक देना, हमारे दिल को शांति मिलेगी। हां, मुझे इसका दंड मिला, खराब बोलने का, बुरा बोलने का, सो खूंटा ठोक देना। व्यक्ति मर गया, गांव के इकट्ठे हुए, पंचायत बुला के उसने कहा था, क्या भाई खूंटा लाओ, इसके मुख में ठोको, दिल को शांति मिलेगी, उसको क्यों उसकी आत्मा अटकी रहे, कहीं लटकी रहे, करो उसका काम पूरा। बड़ा सा खूंटा मंगाया, मेख मंगाई, इतनी मोटी हथौड़ा मंगाया, मुख में उसके ठोका गया, अर्थी बनाई गई, कफन उठा दिया, शमशान ले गई, कंधों पे रखे ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सामने पुलिस चौकी मिली, वो दरोगा देखा ये क्या लफड़ा है, ए भाई किसको ले जा रहे, कहां ले जा रहे, भाई शमशान ले जा रहे, आदमी मर गया है, नीचे रखो अर्थी, अर्थी नीचे रखी, हटाओ कपड़ा, और कपड़ा हटाया तो खूंटा उसके मुख में ठुका हुआ, अच्छा तो मार मुर के लाए इसको, इसको मार के लाए हो, इसको मार के लाए, डालो इन सबको हाथकड़ियां डालो, इनको जेल में बंद कर दो, बेचारे सबको जेल में बंद कर दिया। उसने कहा हाय दुष्ट, तू जीते भी दुख देता रहा और मरते मरते सबको जेल में बंद करके गया, मरते मरते सबको जेल में डाल के गया। ध्यान देना, दुष्ट आदमी की रग रग में, नस नस में दुष्टता होती है। गोस्वामी जी ने कहा दुष्ट संग जन दे विधाता, विधाता कभी दुष्ट का संग न दे, तस्फल तात नरक कर बासा, नरक में रह लेना अच्छा है, गोस्वामी जी के शब्द हैं। गोस्वामी जी बोले दुष्ट संग जन दे विधाता, तस्फल तात नरक कर बासा, नरक में रह लेना जाकर के, सुनना ध्यान से, जब ऊब जाओ पड़ोसियों से घर से तो कहा गंदे आदमी के पास नहीं बैठना, बुरे आदमी के पास नहीं बैठना, खूब ऊब जाओ, कहीं दुनिया में तुम्हारा मन लगे, कहीं न जा पाओ तो कहा भैया तो भले ही नरक में चले जाना पर दुष्ट आदमी के पास नहीं बैठना, इतना दुष्ट आदमी खतरनाक होता है। वासना विकारी, वासनाओं वाला आदमी, विकारी आदमी ऐसे गंधाता जैसे कोई मुर्दा सड़ने पर गंधता है। ध्यान देना, भगवान कृष्ण बोले, चुनो ध्यान से, भगवान कृष्ण बोले ये दुष्ट थी, इस दुष्ट को यही परिणाम मिलना चाहिए था, पूतना तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, प्राण को भगवान ने खींच लिया, पूतना मर गई, और जब मरने लगी तो रूप बदलने लगी, भगवान ने सोचा अरे ये तो विकराल रूप धारण कर लेगी, अपने रूप में आ जाएगी, क्योंकि राक्षस जब मरता तो अपने स्वरूप में आता है, भगवान ने सोचा है तो नंद भवन में आ भी नहीं पाएगी, इतनी बड़ी है। भगवान ने पैर की ठेल मारी, नंद भवन से बाहर आई और एक कंस का बगीचा था 10 कोस का, आम के पेड़ खड़े, उस जाके बगीचे में आराम से जाके कूतना गिरी, सारे पेड़ टूट गए, कन्हैया उसकी पेट पर बैठे हुए, सीना पर बैठे पैपान कर रहे, ब्रजवासी आए, ब्रजांगनाएं आई, बाबा नंद आए, जसोदा मैया आई, सभी ने आकर के देखा ये क्या हो गया, अरे कोई असुर इस प्रकार से आया और कृष्ण कन्हैया को उठा के ले गया। तुरंत मैया ने लाला कन्हैया को गोद में लिया और कुछ परेशान हुई, इधर ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के कुल्हाड़ी मंगाई है और शरीर के अंगों को काटा है, काट के चिता बनाई है, आग लगाई है, और जब आग लगी चिता में तो सुगंधी फैली चारों तरफ। परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, महाराज ये तो राक्षसी थी, दुष्टता थी, रग रग में इसकी दुष्टता थी, इसके शरीर से सुवास क्यों निकली, सुगंधी क्यों निकली, सुगंधी नहीं निकलनी चाहिए थी, ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का। भगवान सुवास क्यों निकली, सुरभि सुगंधी क्यों निकली। सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित
इसकी सुगंधि इसलिए निकली कि भगवान श्याम सुंदर के बांगमय का, भगवान कृष्ण के बांगमय का इसके शरीर से संस्पर्श हुआ, इसलिए उसमें भगवान कृष्ण के जो गुण थे, जो विशेषताएं थी, जो उनका चैतन्य स्वरूप था, वो उसके अंदर आधान हो गया है, इसलिए उसकी जलने पर उसमें सुवास आई, सुगंधी आई। प्रश्न किया, ये पूतना कौन थी, ये पूतना कौन थी? यहां बता रहे हैं, गर्ग संहिता में लिखा है, पूतना कौन थी? विवेचन करते हैं कि बले परम भक्तस्य, बले परम भक्तस्य सुतायै वा मनोहरी, मनोरसुत्वे भूयात् मनस्यापि वरं दधौ। बोले भैया, ये जो पूतना थी, कहा ये बावन की पुत्री थी, बावनो हरि, बलि की पुत्री थी। बावन जी भगवान आए, बलि की पुत्री बावन के आने पर दर्शन को कर करके बड़ी आह्लादित हुई, बड़ी खुश हुई और सोचा यदि कहीं ये छोटा नन्ना मुन्नक बालक यदि मेरी गोद में आए तो मैं जरूर उसको अपना दूध पिलाऊंगा। एक कथा गर्ग संहिता की है, जरूर दूध पिलाऊं। बावन भगवान ने कहा इसमें तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा तब तुमको मैं तुम्हारा दूध जरूर पीऊंगी, जरूर पीऊंगा। सो भैया बही रत्नमाला नाम की कन्या बलि की पुत्री पूतना बनती है और पूतना बनकर के भगवान को दूध पिलाने आई, और जब दूध पिलाने आई तो उसकी ये स्थिति हुई, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए एदप विषादी लेभे गतिर धातृष्णाम सुन्याम कम्बा दयालम शरणम ब्रजेव। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस पूतना का भी उद्धार किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे।
जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला।
जियो श्याम लाला,
जियो श्याम
लाला,
पीली तेरी पगड़ी है रंग काला।
जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला।
जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला,
पीली तेरी पगड़ी है रंग काला।
जय हो।
ला ला ला, हुआ हुआ
मती रो
बे लाला
समझा बे तुम्हें सुन दबुआ
समझा बे तो ही सुन दबुआ
जियो जियो
गिरी है रंगी काला
हर खीर जले पीला
खीर जले भी लटुआ
हर खीर जले पीला
हर खीर जले भी लटुआ
यशुमत आनंद हुआ
यशुमती के घरी आनंद हुआ
जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंगी काला
जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला चर मर चरम करे
पलना अरे चर मर करे पलना
अरे चर मर चरम करे पलना
ब्रजवासी गावे जियो ललना
अरे ब्रजवासी गावे जियो ललना
जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंगी काला
जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंगी काला
हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंगी काला
जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी है रंगी काला
अरे पीली तेरी पगड़ी है रंगी काला
अरे पीली तेरी पगड़ी है रंगी काला गोपाल जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय
बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय
श्री राधा रमण हरि
गोविंद
जय जय
लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान छोटे से हैं लाला ने करवट ली, मैया ने एक उत्सव मनाया, लाला को बाहर लेटा दिया। कन्हैया ने सोचा उत्सव मेरा हो रहा है, हमको घर से बाहर निकाल दिया है। लाला को अच्छा नहीं लगा और कहां लेटाया, सकट बोलते गाड़ी को, गाड़ी के नीचे वो जगह होती वहां पलना को बांध दिया। लाला लेटे हैं, लाला को अच्छा नहीं लगा। लाला ने बोला अरे हम अंदर रहने के लायक हैं, बाहर निकलने के लायक नहीं है, मुझे अंदर रखो, बाहर मत निकालो, गाड़ी के नीचे मत सुलाओ, हमको संसार रूपी गाड़ी के ऊपर सुलाओ, संसार रूपी परिवार रूपी गाड़ी के ऊपर सुलाओ। तो लाला को गाड़ी के नीचे सुलाया, लाला को अच्छा लगा नहीं, लाला ने दोनों लातें मार करके गाड़ी को ऐसे उछाला और वो गाड़ी धड़ाम से चकनाचूर हो गई, त्रिणामृत नाम का आशीर्वाद दब करके मर गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लाला को मैया ने दूध पिलाया, आंगन में बैठी हैं, दूध पिलाते पिलाते लाला इतना भारी हो गया सो मैया से वजन सहन नहीं हुआ, लाला को उठा के जमीन पे बिठाल दिया। मैया काम में लग गई, इतने में त्रिणामृत आया और लाला को उठा करके आकाश में ले गया, आकाश में ले गया। लाला ने कहा तूने बहुत अच्छा किया, अब यह चिल्लाएगा तुझे कि बचाने भी नहीं आएगा। लाला ने उसका गला यूं दबाया और दबा करके वही उसको मार दिया। लाला ने वहां से छोड़ा तो जैसे कांच की बोतल पत्थर पे गिरती है, टूट के चकनाचूर हो जाती, यही हालत त्रिणामृत की हुई। त्रिणामृत भी मर गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लाला यमुना के तट पे गया है, कुछ खा के आया, शिकायत की कि कुछ मुंह में है, कन्हैया मुंह फैला, और जो कन्हैया ने मुंह फैलाया तो मैया ने देखा अरे इसके मुख में तो सारा ब्रह्मांड है, विश्व ब्रह्मांड है, और विश्व ब्रह्मांड है लगता ये भगवान है, लगता ये भगवान है। भगवान ने सोचा कि सारा काम खराब हो गया, मैया के सिर पे हाथ फेरा और मैया सारा कुछ भूल गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, ये दर्शन कराया। ये चरित्र कहना छोटा सा है, पांच मिनट का। गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, कथा तो बहुत प्यारी थी, मैं क्या बताऊं। गर्गाचार्य जी आए हैं, नंद बाबा ने स्वागत किया है, मुझे वसुदेव ने भेजा है, हवन करना है, लाला का नामकरण भी करना है, चौक पूरा है, हवन किया है, का ऐसा करो कि एक लाला को आप ले लो, एक लाला को दूसरी देवी को दे दो। लाला गोद में है, लेकर के हवन करने के पश्चात नामकरण संस्कार किया। ये बड़ा है, इसके लिए इसका नाम होगा, ये बहुत बलवान होगा, बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और छोटा बाला है, मैं क्या बतलाऊं, जन्म कुंडली इसकी बड़ी विलक्षण है। गर्गाचारी बोले कुछ थोड़ी गड़बड़ी है। बोले क्या गड़बड़ी है, बस गड़बड़ी यही है कि इसका जो राहु है वो ऐसे स्थान पर बैठा है। सुनते ही नंद बाबा घबरा गए, कहां बैठा है, क्या होगा, बीमारी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। हाँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं, घबराइए नहीं, ऐसा है कि जिसका राहु नीच स्थान पर होता है ऐसा योग बनता है ज्योतिष का, उस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, और कोई बात, और कोई बात नहीं, बहुत पत्नियां होंगी, कोई बात नहीं। नंद बाबा यशोदा मैया बोली, कोई पानी पिलाएगी, कोई चाय पिलाएगी, कोई सब्जी लाएगी, कोई दाल लाएगी, कोई रोटी लाएगी, खूब सेवा होगी। यशोदा मैया भी खुश हो गई, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, खुश हो गए। इसका नाम होगा कृष्ण, कर्षयत इत कृष्ण, किम नाम कर्षयत, जिसमें आकर्षण हो उसका नाम कृष्ण है, इसका नाम कृष्ण होगा। और फिर भैया इसका केवल कृष्ण ही नहीं, इसके तो सहस्त्र नाम है, अनेक रूप रूपाय विष्णुमे प्र विष्णुमे, ये तो अनेक नामों वाला होगा। नामकरण संस्कार हुआ, संस्कार के बाद में नंद बाबा बोले भगवान प्रसादी तो जरूर पाएंगे आप। भरगाचार्य बोले हम प्रसादी तो पाएंगे लेकिन मैं ब्राह्मण देवता हूँ, अपने आप बना के पाता हूँ, लीजिए। सीधा सामान दिया, रसोई तैयार की, थाली में परोसी। संक्षिप्त कह रहा हूँ, बड़ा भाव का प्रसंग था, शाम को बहुत कथाएं हैं इसलिए मैं कह देता हूँ। थाली में खीर को परोसा है, जब थाली को खीर में परोसा है, गर्गाचार्य का नियम, संत का नियम, भक्त का नियम, उपासक का नियम, बिना भगवान को खिलाए भोजन न करे। शास्त्र में लिखा है जो बिना खिलाए भगवान खाता है वो पापों को खाता है। भगवान ने भगवान का भोग लगाया, गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़े, हे दीन बंदातार करुणा वरलाल है, मेरे प्यारे नारायण पधारो पधारो। हाथ में माला ली, 108 बार की माला, 5 बार फेरते थे तब रोटी खाते थे। आंख बंद की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जल्दी आओ जल्दी आओ, सामने भोग रखा है, इसे जीवो आरोगो। कन्हैया ने कहा बहुत प्यार से बुला रहा है, जाना जरूर चाहिए। भगवान आए, खाने लगे, आंख खोली, जसोदा मैया, हे जसोदा मैया, मैया मैया तेरे लाला ने तो सारा काम खराब कर दिया। लाला तू क्यों आया? अरे मैया मैं क्या बताऊं, मैं यूं तो जा रहा था, इसने कहा आओ और खाओ, तो आया और खाने लग गया। अब ऐसा नहीं करना महाराज, दोबारा फिर बना लो। दोबारा फिर बनाया, फिर भोग लगाया, फिर आवाज लगाई, तुदीयं वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पितम, हे गोविंद तेरी वस्तु को तुझे अर्पित करता हूँ, जरूर पधारो, अवश्य अवश्य आओ और प्रसादी को पाओ, प्रसादी को पाओ। अब की गोविंद आंखें बंद है, जब करना शुरू किया गोविंद भगवान आ गए और खाने लगे। आंख खोली और चिल्लाने वाले ही थे, कन्हैया ने कहा हे बाबा बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल बार बार बुलाता है और चिल्लाता ही बार बार है, या बुला नहीं और बुलाया तो चिल्ला नहीं। भगवान ने उसी क्षण गर्गाचार्य जी महाराज को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया है। बोलो विष्णु भगवान की। गर्गाचार्य जी ने दर्शन किया, लंबा साष्टांग नमस्कार किया और कहा प्रभु जी अब आपको मैं जिमाऊंगा। गर्गाचार्य जी लेते हैं उस थाली से, भगवान के मुख में देते हैं, कभी कभी स्वयं भी खा लेते हैं, भगवान खिला रहे हैं। जसोदा मैया निकली, उसने देखा है तो खुद अपने आप खिला रहे लाला को। अभी तो आप चिल्ला रहे थे कि लाला ने झूठा कर दिया, अब अपने आप खिला रहे हो। बोले मैया तेरा ये जो लाला है ना, ये कोई सामान्य इंसान नहीं, तो नारायण है, ये तो नारायण है, ऐसा भान कराया है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। संक्षेप में इतना ही, शेष चर्चा सायंकाल की जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी बन बल्लभ, जय गिरवर धारिणी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
करुणा सागरी
मुरली मनोहर
मनोहर करुणा सागरी
मुरली मनोहर करुणा सागरी
मुरली मनोहर करुणा सागरी
यमुना किनारे धनु चारी यमुना किनारे धनु चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
यशोदानंदन
ब्रज रन चंदन
यशोदानंदन ब्रज रन रंजन
यशोदानंदन ब्रज रन रंजन
यमुना किनारे
किनारे रुचारी
जय राधा
जय हो
माधव जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Rama,
Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare.
Holy Baba, Krishna Nama.